जय ओम विश्वात परमहंस परिवकाचार अष्टोत्तरष्ट हे डिवाइन गेस ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस्कान फाउंडाचार से जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वात परमहंस परिवकाचार अष्टोत्तरष्ट हे डिवाइन गेस भक्ति सिद्धांत सुख गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार श्री दास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव से गौर भक्त की श्री गौर निताय की श्री कृष्ण बलराम भगवान की श्री राधा राधिकारम भगवान की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की ग्रंथराज भागवतम की तय गौर प्रेमानंद आल गुरु समल श्री गोयन गौराम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो श्रीमद्भागवतम षष्ठम स्कंध श्लोक संख्या अध्याय 16 श्लोक संख्या 15, 16, 17, 18 18, 19 तो 15, 16 का सिर्फ हम अनुवाद पढ़ दे रहे हैं ठीक ताकि प्रसंग समझ आ जाए। परम ब्राह्मण अंगिरा तथा नारद के उपदेशों से जागृत होकर राजा चित्रकेतु आत्मज्ञान से भली भांति अवगत हो गया। जिस प्रकार हाथी जलाशय के कीचड़ से बाहर निकल आता है वैसे ही राजा चित्रकेतु गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकल आया। 16 राजा ने यमुना जल में स्नान किया और विधि पूर्वक अपने पितरों तथा देवताओं को जल का अर्घ दिया। फिर इंद्रों तथा मन को संयमित करते हुए उन्होंने भगवान ब्रह्मा के दोनों पुत्रों अंगिरा तथा नारद को नमस्कार किया। 17 तत्पश्चात आत्मसंयमित तथा शरणागत भक्त चित्रकेतु पर अत्यधिक प्रसन्न होकर सर्वाधिक शक्तिमान मुनि नारद ने निम्नलिखित दिव्य उपदेश दिया। अब है 18 श्लोक और 19 ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये ओम हे ईश्वर नमः नमस्कार है तुभ्यं तुमको भगवते श्री भगवान वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को धीमहि ध्यान करने दो प्रद्युम्नाय प्रद्युम्न को अनिरुद्धाय अनिरुद्ध को नमः नमस्कार है। संकर्षणाय भगवान संकर्षण को च भी नमः नमस्कार है। विज्ञान मात्राय ज्ञान से पूर्ण रूप को परम आनंद मूर्तये दिव्य आनंद से पूर्ण आत्म आत्मा रामाय आत्मनिर्भर भगवान को शांताय तथा शांत निवृत्त द्वैत दृष्टे जिसकी दृष्टि द्वैत से फिर गई है अथवा जो अद्वितीय है। अनुवाद होता पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की जय। नर ने चित्रकेत को निम्नलिखित मंत्र प्रदान किया। ओंकार प्रणव नाम से संबोधित किए जाने वाले हैं। हे ईश्वर, हे श्री भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान वासुदेव, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे भगवान प्रद्युम्न अनिरुद्धाय संकर्षण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे दिव्य व्यक्ति के आगार, हे परमानंद, मैं आत्मनिर्भर आत्माराम तथा परम आत्म शांत आपको नमस्कार करता हूँ। हे परम सत्य अद्वितीय आप ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में जाने जाते हैं तथा आप समस्त ज्ञान के भंडार हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य
श्वेत दीप नामक विशेष लोक में स्थित है जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में मिलती है। अडान परस्थ अंड शब्द का अर्थ है यह ब्रह्मांड। इसी ब्रह्मांड में श्वेत दीप नामक एक लोक है जहाँ क्षीरोदक साई विष्णु स्थित है। उन्हीं से इस ब्रह्मांड के सारे अवतार उद्भूत हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, श्री भगवान के इस समस्त रूप अद्वैत तथा अच्युत हैं, अर्थात बद्ध जीवों की भांति नीचे नहीं गिरते। सामान्य जीवात्मा माया के चंगुल में आ जाता है, किंतु परमात्मा अपने विभिन्न अवतारों तथा रूपों में अच्युत हैं। अतः बद्ध जीव के शरीर से उनका शरीर भिन्न होता है। मात्रा शब्द की व्याख्या मेदिनी कोश में इस प्रकार दी गई है, मात्रा करण विभूषायाम वीते माने परिच्छदे, अर्थात मात्रा शब्द का अर्थ कान का अलंकरण, संपत्ति, आदर तथा आवरण का स्वामित्व है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यं तान्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और विषयों के संयोग से होने वाली सुख दुख की प्राप्ति सर्दी गर्मी के आने जाने के समान ही अनित्यता क्षणभंगुर है। इसलिए हे अर्जुन, विचलित हुए बिना उसको सहने का अभ्यास कर। इस बद्ध जीव में शरीर वस्त्र की भांति काम में लाया जाता है। जिस प्रकार हमें गर्मी तथा सर्दी में भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हम बद्ध जीव अपनी कामनाओं के ही अनुरूप अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर ज्ञान से पूर्ण है। अतः इसी प्रकार के आच्छादन वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। यह विचार कि श्री कृष्ण का शरीर भी हमारी ही तरह है, अर्थात उनके शरीर तथा आत्मा भिन्न भिन्न है, हमारी ना समझी है। श्री कृष्ण में ऐसा अंतर नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर ज्ञानमय है। हमें तो शरीर इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हम में ज्ञान का अभाव रहता है, किंतु वासुदेव श्री कृष्ण ज्ञान से पूरित हैं, इसलिए उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। श्री कृष्ण की आज से 40 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य से कहे गए वचन याद है, किंतु सामान्य मनुष्यों को परसों की कही गई बातें याद नहीं रहती। यह हमारे तथा श्री कृष्ण के शरीर में अंतर है। इसलिए शरीर को विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये कहा गया है। क्योंकि भगवान का शरीर ज्ञानमय है, अतः वे सदैव नित्य आनंद का अनुभव करते रहते हैं। निसंदेह उनका स्वरूप ही परमानंद है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में हुई है, आनंदमयो अभ्यासात्। ईश्वर सहज ही आनंदमय है, जब भी हम श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं वे सभी परिस्थितियों में आनंद पूरित रहते हैं, कोई उन्हें कोई छीन नहीं कर सकता। आत्मराम आय, उन्हें बाहरी सुख ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे आत्मनिर्भर हैं। संताय, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। जिसे अन्य साधनों से आनंद खोजना होता है वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है। कर्मी, ज्ञानी तथा योगी चिंता से पूर्ण रहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ चाहिए, किंतु भक्त को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। वह तो परम आनंदमय भगवान की सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। निर्गुण द्वैत दृष्टये हमारे बद्ध जीव में हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, किंतु श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों का आभास होता रहता है, पर उनके शरीर का कोई भी अंग दूसरे अंग से भिन्न नहीं होता। श्री कृष्ण अपने नेत्रों से देख सकते हैं और नेत्रों से बिना भी देख सकते हैं। अतः श्वेताश्वर उपनिषद का वचन है, जक्षत्य चक्षु, वे अपने हाथों तथा पांवों से देख सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, वे अपने शरीर के किसी भी अंग से कोई भी इच्छित कार्य कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिवान कहलाते हैं।
बहुत सुंदर। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु मृतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। बड़े ध्यान से सुनेगा, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है हम सब के लिए, कैसे इस अंधकोप से निकलें उसके बारे में। तो पहले हम रिकैप, प्रश्न किस प्रकार से है ये आप लोग पहले समझिए, जो लोग पहले नए आए हैं। तो देखिए, ये जो प्रसंग है उस समय का है कि एक राजा थे, चक्रवर्ती राजा, सम्राट चित्रकेतु। क्या नाम था? चित्रकेतु महाराज। ये पूरे इनको चक्रवर्ती राजा, पूरे विश्व के राजा थे। जैसे भगवान राम के पिताजी क्या नाम था? दशरथ। वो भी क्या कहलाए? चक्रवर्ती राजा। जिसका पूरे विश्व में राज्य हो उसे चक्रवर्ती कहा जाता है। तो चक्रवर्ती राजा थे चित्रकेतु महाराज, और उनके चार एक करोड़ रानियां थी। कितने? एक करोड़ रानी से शादी की थी। यहाँ एक रानी में लोग परेशान हो जाते हैं, एक दो तीन, लेकिन यहाँ एक करोड़। अदृश्य है कि एक करोड़ रानियां हैं उनके महलों में, लेकिन एक को भी पुत्र नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब बाझिन थी। बाझिन समझते ना, जिन स्त्रियों को कोई पुत्र नहीं होता, कोई संतान नहीं होती, उनको क्या कहा जाता है? बांझ थी, बांझ थी। पर उपाय बताए हैं तात्पर्य में, वो सब बांझ थी। हाँ। और इसलिए सब कुछ होते भी, मोबाइल बंद कर दो भाई, साइलेंट में कर दीजिए, वाइब्रेट पे कर दीजिए। बहुत सुंदर प्रसंग, आप ध्यान सुनेंगे तब आनंद आएगा, क्योंकि ये आनंद रस तभी आता है भागवत में जब आप बड़े ध्यान से सुनते हैं, राइट। तो पूरा आन लीजिए जब आप, अब दृश्य ये है, अब भूल जाए पंजाबी वर्ष, अब आप कहाँ बैठे हैं? महाराजा चक्रवर्ती, हाँ, चित्रकेतु महाराज, हाँ, जिनके यहाँ एक करोड़ क्या है, रानियां हैं, और 1 करोड़ रानियां जो हैं वो भी दुखी हैं, और महाराजा चित्रकूट भी दुखी हैं, क्योंकि एक भी संतान नहीं। निश्चित रूप जब इतनी रानियां हो, एक संतान हो, तो दुख की बात है। महाराज दशरथ तो 3 ही रानियों से दुखी थे, 3 रानियां थे, एक भी संतान नहीं थी। 60,000 साल के बाद तब उनको जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सोचने वाली बात, जब उनके बाल पकने लगे थे, ये बड़े दुख की बात है। गृहस्थ आश्रम में अगर गृहस्थ है और संतान नहीं हो तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, या तो गृहस्थ आश्रम में आओ नहीं, अगर आए हो तो संतान होनी भी चाहिए, ये वैदिक सिस्टम है, प्रणाली है। तो उनके साथ बहुत दुख था कि 1 करोड़ रानियां थी लेकिन एक भी संतान नहीं। एक बार क्या हुआ कि राजा धनवान थे, सब कुछ था, लेकिन संतान न होने का कष्ट में थे। तो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि आए, तो जैसे ही कोई आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, जैसे ही वो आए, उन्होंने आसन दिया, बैठाए, और खुद जमीन पर नीचे बैठ गए राजा। वास्तव में यही सिस्टम है, स्वागत करने का तरीका है कि जो आए अतिथि उसको हम उच्चासन बैठाएं, हम बल्कि थोड़ा सा नीचे बैठे, अच्छा लगता है। तो इसी तरह से उन्होंने भव्य स्वागत किया। अंगिरा मुनि ने कहा कि सब कुछ पूछा हाल समाचार, सब कुछ ठीक है। तो लोग ठीक नहीं रहते फिर बोलते सब ठीक है। आप जानते हैं प्रभुपाद बड़ा सुंदर धार दिया करते थे कि भाई हॉस्पिटल में जाओ, लोग जो हैं लेटे रहते हैं, सब सुइयां सब लगा हुआ है, सब ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं है, पर बोलते क्या ठीक है। लेकिन अंगिरा कहे कि आपका सुंदर जो फेस है, चेहरा है, वो पीला नजर आ रहा है, इसका मतलब कोई कष्ट है आपको। उन्होंने कहा कि देखिए चित्रकेतु कि हे ऋषि, आपसे कोई छुपा नहीं, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि आप पूछ ही रहे तो हम बता देते हैं कि जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सब कुछ संपन्न है। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, 1 करोड़ रानियां भी हैं, वो भी सच है, लेकिन एक भी संतान नहीं है, और हमारे जो पूर्वज हैं, दादा परदादा जो मर चुके हैं, वो नर्क में हैं, क्योंकि जब तक संतान नहीं होगी वो पिंडदान नहीं करेगा, उनका उद्धार नहीं होगा, और इसलिए जो है एक पुत्र रत्न अवश्य मिलना चाहिए। तो गंभीर समस्या थी। अंग्रेज ने कहा कि ठीक है, आपकी इतनी इच्छा है। तब उन्होंने अपनी शक्ति से एक खीर दी, त्वष्टा नाम की खीर दी, और कहा कि एक खीर आप अपने जो सबसे बड़ी रानी है उसको खिला दो। वो जब खीर खाई तो रानी जिसका नाम जो सब माने 1 करोड़ में जो पहली रानी थी, सबका नाम तो आप याद ही नहीं कर सकते, लिखा भी नहीं है। जो पहली रानी थी उसका नाम था कृति द्वृति उसका नाम था, उसी को जो है खीर दिया। अब देखिए जब खीर खाई तो निश्चित रूप से वो गर्भ धारण कर लिया, और उसके बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अंगिरा ऋषि ने कहा था देखे ये जो पुत्र उत्पन्न होगा, ये सुख और दुख अर्थात हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा, इसलिए उसका नाम रखा हर्ष शोक, हर्ष भी देगा शोक भी देगा। उन्होंने क्या सोचा कि पहले आने थे 2 पुत्र को, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, है कि नहीं, ऐसा सोचा। तो जब संतान उत्पन्न हुआ राजा बड़े प्रसन्न हुए, सभी प्रसन्न होते हैं, बेटा हुआ इसलिए बहुत प्रसन्न है। जितना पहने थे आभूषण राजा सब बांट दिए, कब सोने चांदी हीरे जवाहरात बटवाए, मानी खुशी में सब पूरा सब बड़े खुश थे। धीरे धीरे जैसा बच्चा बड़ा होने लगा है ना, तो 1 करोड़ में एक रानी जो कृतु द्वितीय थी उसका राजा के प्रति उसके हृदय में और राजा के प्रति रानी के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ पड़ा है ना। तो जो राजा था चित्रकेतु, वो सिर्फ उसी रानी को रिस्पेक्ट देता था, प्रेम करता था जिससे पुत्र। अब बाकी, अब एक करोड़ में एक घटा दीजिए, बाकी जितनी भी शेष रानियां थी वो सब बेकार हो गई उसके राजा के लिए। तो बाकी जितनी भी शेष रानियां थी बड़ी दुखी हुई कि ये राजा जो है बस उसी रानी को जो है कर रहा है है ने। और हम लोगों को तो एक नौकरानी से भी बदतर, बिल्कुल पूछता भी जानता भी नहीं इसे, है ना, ऐसी भी कर दी। तो उन रानी में ईर्ष्या पैदा हो गई। ईर्ष्या बड़ी खतरनाक चीज होती है। आप लोग ईर्ष्या जानते ही नहीं जानते, आप लोग जानते ही नहीं ईर्ष्या क्या होती है, ईर्ष्या करते ही नहीं करते ईर्ष्या है ना। अब देखिए जो ईर्ष्या है बड़ी खतरनाक होती है। इस प्रसंग से आपको शिक्षा लेना है। वो सारी रानी इतनी ईर्ष्या करने लगी उस रानी से कि सारा कारण ये लड़का है, ये लड़का क्या पैदा हो गया, हम लोग उपेक्षित हो गए, ऐसा सुना। तो सब लोगों ने प्लान बनाया सारी रानियां मिलकर के। तो जगह भी तो बहुत होती होगी भाई, इतनी कौन रानियां के साथ घर के इकट्ठी हो, है ना। तो काफी बड़ा आंगन होगा, महल होगा। आप कल्पना करिए कि इतनी रानी कैसे इकट्ठी होंगी। माइक लगाना पड़ रहा होगा बोलने के लिए, राजपला के लिए, है ना। और सब रानी ने मिलकर के कहा कि एक उपाय सोचा, किसी न किसी तरह से इस लड़के को अगर जहर दे करके मार दिया जाए तो सब ठीक हो जाए। उन लोगों ने ऐसे किया, क्योंकि अब इतनी रानियों के बीच में एक लड़का था तो सब कोई वही नहीं था। मौका पा करके उसको जहर खिला दिया गया और वो रानी क्या हो गई, लड़का क्या हुआ, मार गया। पहले कृति तृति को इतना वो पहुंचती, वो सोचते कि लड़का बेटा जो है सो रहा है, जाने दिया। लेकिन काफी देर के बाद जब उसको याद आया कि बेटा अभी तक सो ही रहा है, तो नौकरानी से बोला है ना कि जा करके बेटे को लेके आओ मेरे पास। नौकरानी जब वहां पे गई तो बहुत हिलाया जुला, लेकिन वो कुछ बोले, मर चुका था उसकी आंटे, वो वहीं पे मूर्छित होकर गिर गई। और फिर जैसे कुछ हो जाए फिर दौड़ कर गई और रोने लगी, कह कि वो तो मर गया। अब रानी भी दौड़ के आई, अब ये पूरा तहलका मच गया राज्य में, सूरसेन नगर में। राजा भी क्या, सब छाती पीट पड़े। अब आप सुनो कि जो दूसरी रानियां जिन लोगों ने प्लान बना करके मारा था वो ज्यादा रोने लगी, ऐसा भी होता है यहाँ, आप समझ गए ना, वो ज्यादा रोने लगी। सब दुख नहीं है उन लोगों का, स्त्री सब रो रही हैं। अब आप सुन के एक करोड़ रानियां अगर रोए चिल्ला चिल्ला करके क्या दृश्य होगा ऐसा ही हुआ, पूरा राज्य जो है 100 किलर फट गई। क्योंकि एक करोड़ रानियां और प्लस राजा सब रोने लगे। अब उसके बाद जो प्रजाति सब रोने लगी, आप दृश्य समझ सकते हैं कि पूरा राज्य जो है शोकाकुल हो गया। जब इस तरह से स्थिति आई तब कौन प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के दोनों पुत्र, कौन, अंगिरा ऋषि और नारद जी, ये लोग दोबारा आए और इस बार आकर के ज्ञान दिया, आत्मज्ञान, और बताया कि तुम किसके लिए रो रहे हो। मैं भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है पूरा उनको शिक्षा दिया चित्र के तुम्हारा। तब कुछ रोना पिटना धीरे धीरे क्या हुआ, कम हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि नारद जी ने कहा कि हे चित्रकेतु महाराज, मैं आपके बेटे को कुछ पल के लिए वापस बुला लेता हूं, मतलब धर जीवित कर देता हूं, क्योंकि उसकी आयु जो है अभी है, लेकिन उसको अकाल मृत्यु, उसको जो है मारा गया है ना, तो उसके जीने का अवधि थी लेकिन उसको बीच में मारा गया है, तो इसलिए वो पुनः वापस आ सकता है। तो अपने योग शक्ति से नारद जी ने क्या किया, उस जीवात्मा को उसी शरीर में वापस बुला लिया। और जो सबके सामने है वो जो बालक है उड़कर क्या हो गया, बैठ गया। और जो उपदेश दिया ये बहुत जरूरी है। कहे कि देखो नाजी का, देखो ये सब रो रहे हैं, ये तुम्हारे माता पिता सब रो रहे हैं। तो उस पुत्र ने कहा न तो कोई मेरा माता है और न तो कोई मेरा पिता है। ये उसी प्रकार से है जिससे रेत जो बालू होता है, बालू सागर की एक लहर आती है बालू इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरी लहर आती है सारी बालू बिखर जाते हैं। उदाहरण देख समझाए, पता नहीं कितने जन्म में हम कहां कहां गए, किस सोनी में गए, है ना। तो आत्मा हमारा वास्तव में कोई माता पिता नहीं है, हम ऐसा समझते हैं। आप खुद सोचिए, आप जितने लोग बैठे हैं आप अपने घर में, आप खुद सोचिए आप अपने घर में जाए, अपने घर में जितने भी लोग हैं यहां आने से, अपने घर में आने से पहले कहां थे, किस योनि में थे, राइट। और शरीर छोड़ने के बाद फिर कहां जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं है, ये स्थिति है। तो प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर ढंग से इसको समझाया है कि उसी प्रकार से है जैसे ट्रेन के डिब्बे में आप जब सफर करते हैं तो कितने लोग दूर दूर से आकर के एक डिब्बे में इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, खाना निकालते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, बड़ा बातचीत करते हैं, बड़ा सता है। लेकिन जैसे जिसका जिसका प्लेटफॉर्म आता है वो उतरते चले जाते हैं, एक समय ऐसा आता है पूरा डिब्बा खाली हो जाता है। तो हम इस संसार में हमने घर में इसी तरह से जिस घर में रहते हैं उस घर में पहले कौन था, दादा परदादा थे सब चले गए, आज हम हैं, कितने दिन तक हम रहेंगे, हम भी चले जाएंगे, हमारे संतान हैं तो वो रहेंगे फिर वो भी चली जाएंगे, उनके सुना सब आना जाने लगा। वास्तव में सच्चाई ये है कि कोई किसी का नहीं है, न कोई किसी का माता न किसी का पिता, एकमात्र अगर हमारे माता पिता हैं तो कौन है, कृष्ण। इसीलिए बचपन में जब हम पढ़ते थे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम भगवान को क्या कहते हैं, माता भी कहते हैं और पिता भी कहते हैं, जबकि इस संसार में हम पिता को पिता कहते हैं माता को माता कहते हैं, लेकिन भगवान ऐसे परम पिता हैं जो कि माता भी हैं और पिता भी हैं और सखा भी हैं। तुम्हें माता च पिता त्वमेव, तुम्हें बंधु च सखा त्वमेव, ऐसे परम भगवान को जो हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम नहीं होता। जिनके प्रति होना चाहिए उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम नहीं होता, और जिसके प्रति नहीं होना चाहिए हमारा प्रेम उसी के प्रति होता है, इसीलिए हम क्या भुगत रहे हैं, कष्ट भुगत रहे हैं। आप कितना भी महल बना करके रख दीजिए, आप अपना नाम लिख दे फलाना खुराना, फलाना सटीजा, फलाना ये फलाना, नेम प्लेट लगाने से आपका घर नहीं हो जाता, नेम प्लेट लगाने से नहीं होता कि आप तभी तक उस घर में हैं जब तक परम पिता की क्या है, इच्छा है, कृपा है, आप चले जाएंगे। अगर आप संतान हो रहेगी वो भी चली जाएगी, अगर नहीं संतान है तो खाली हो जाएगा घर, ये स्थिति होती है। लेकिन जो लड्डू गोपाल जिनको आपने अपने घर में बैठा रखा है वो वहीं डटे रहेंगे, भगवान कहीं नहीं जाएंगे। तो घर किसका है, भगवान का है, किसका घर है, भगवान का, कोई भगवान का नाम नहीं लिखता। अग्रवाल हाउस, गुप्ता हाउस, ए हाउस, ओ हाउस, भगवान का कोई नाम ही नहीं लिखता, जबकि वास्तव में घर के मालिक कौन है, भगवान। कृष्ण महल लिखिए, कृष्ण महल, क्या लिखिए, कृष्ण महल, ये घर किसका है, कृष्ण का है। प्रभुपाद जी ने ऐसा किया, एक बार प्रभुपाद जी जब जुहू में थे, प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक को जाया करते थे, जब मॉर्निंग वॉक जाते हुए एक मिस्टर सेठी जी थे और दो तीन प्रभुपाद जी के जमाने की बात है, उनके घर जा चुके हैं, है ना। तो उनके घर प्रभुपाद जी कभी चले कि रास्ते में ही था, है ना। रास्ते में कई फिल्म स्टारों के घर हैं, तो प्रभुपाद जब जाते तो सब देखते थे, है ना। तो प्रभुपाद जी उनके घर गए तो नाम रख दिया कृष्ण महल, नाम हटाओ प्लेट हटाओ, किसका घर है, कृष्ण का है, मधुसूदन पैलेस, है ना, ऐसा नाम रखे। और सच्चाई यही है कि घर ठाकुर जी का ही है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। हम घर में भगवान को बैठाते हैं लेकिन उनसे हमारा लगाव होता नहीं, ये सच्चाई है। कैसे, एक घर में टेलीविजन है और एक कमरे में भगवान है, आप सब ज्यादा किस कमरे में बैठते हो बताइए, बताइए, टेलीविजन वाले कमरे में ज्यादा बैठते, राइट। भगवान कमरे में दो मिनट भी मन नहीं लगता बैठने का, है ना। और जब विपत्ति आती है घर में तो किस कमरे में दौड़ के जाते हो, तो भगवान ठेंगा दिखा देते हैं, वो क्या कहेंगे, उसी घर में जाओ जिस घर में ज्यादा समय देते हो, उसी कमरे में जाओ। तो हमारी यही स्थिति है, वास्तव में ये समझने की बात है, है ना। ये जो हंसी आ रही है इसलिए हंसी आ रही है कि सच है, है ना, यही सच्चाई है। आप कितना भी डर डर घूमे, हम कहते हैं आप जाकर वृंदावन जाके बस जाइए, लेकिन आप हृदय में भगवान के प्रति अनुराग नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, तब किस कहीं भी रहिए, क्योंकि भगवान इससे प्रभावित नहीं होते। दिल्ली के लोग क्या कर रहे, छुट्टी होती नहीं कि दो घंटे में वृंदावन पहुंच जाएंगे, गिरिराज जी परिक्रमा करेंगे, राधे 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 राधे, और दिल्ली में आकर के फिर उसी काम में लग जाएंगे, है ना, जो उनको करना है जिंदगी भर। गंगा स्नान करने से कोई फायदा नहीं, हरिद्वार छुट्टी हुई, हरिद्वार पिकनिक, अब जो धार्मिक स्थान हो गए तीर्थ स्थान, एक क्या पिकनिक स्पॉट बन गए, छुट्टी हुई ये गाड़ी चल दिए, डुबकी लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे, आते ही सोई करे। तो प्रभुपाद जी कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक कुंजर स्नान है, हाथी जैसा स्नान करता है, हाथी स्नान करता है बाहर आते ही सारी मिट्टी फिट डाल लेता है, स्नान करने से कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार से तीर्थों धाम जाने से कोई फायदा नहीं है अगर आप सुधरते नहीं है। हमारा मन के भगवान हृदय की भावना से प्रभावित होते हैं, भगवान किससे प्रभावित होते हैं, हृदय की भावना से प्रभावित होते हैं। तो आपका हृदय तभी निर्मल होगा जब आप अपराध रहित भक्ति करेंगे, नहीं तो उसी तरह से रात भर नाव चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, जब सुबह हुई नाव एजिटेड रही, उस समय नहीं आता भाई नाव तो हम दिन रात भर चलाते रहे, नाव यहीं पे क्यों है, इसलिए कि लंगर नहीं हटा रखा था। तो अपराध रूपी लंगर जब तक लगा रहेगा आप उछलते कूदते रहे, जाते रहे धाम बद्रीनाथ धाम केदारनाथ, एक टांग पे खड़े हो जाए कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं, जब तक आपका हृदय नहीं साफ होगा, ईर्षा विहीन नहीं होंगे। वास्तव में ईर्षा सब जैसे इसमें आया है कि ईर्षा कुजस से ऐसा हुआ, तो प्रभुपाद जी लीलामृत में बताते हैं, भाई आपको पढ़ के सुना, हम प्रभुपाद जी के एजिटिस बात करते हैं। प्रभुपाद जी बोला कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई भक्त अपनी उन्नत की परख केवल इस बात से कर सकता है कि वह ईर्षा से कितना मुक्त हो सका है। आप भक्ति में कितने आगे जा रहे हैं इसका पैरामीटर हमारा क्या है, कि आप कितना ईर्षा विहीन हो रहे हैं। अगर ईर्षा विहीन नहीं है, उछलते रहे नाचते रहे ऐसे ऐसे करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे, है ना, खींच खींच करके, है ना। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि हमारा मन नहीं लगता है, इसलिए मन चुप भटकता है, इतना हरे कृष्ण 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 हरे, कोई दीवार सामने कोई खंभे के सामने खड़े कैसे हरे कृष्ण कृष्ण, कोई ऐसे हरे कृष्ण, मन नहीं लगता है, ये सच्चाई है। भगवान जानते हैं इस चीज को, है ना, भगवान हृदय विराजमान है, परमात्मा को सब जानते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त को और कुछ नहीं परखना, इतना ही परखना है कि वो ईर्षा विहीन कितना होता जा रहा है। पूरा परतात्मा सुनो, प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक संसार में ईर्षा का कोई स्थान नहीं होता, यद्यप कृष्ण के सभी मुक्त पार्षद उनकी सेवा में प्रतिनिधिता के रूप में लगे रहते हैं, कंपटीशन रहता है, लेकिन उस कंपटीशन में ईर्ष्या नहीं रहती। ये प्रभुपाद आप खूब गीता डिस्ट्रीब्यूशन करिए, 1,00,000 गीता है ना, कंपटीशन करना है, लेकिन वो कंपटीशन के नाम से प्रेम भाव से। ये प्रभुपाद थे जैसे गोपियां करती थी, प्रभुपाद बताते ना, किंतु वे एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहती। एक भक्त दूसरे भक्त को देख करके अगर मुंह फेर ले, अच्छा वार है उधर चला जाता है ना, भगवान सब देख रहे हैं, है ना, ये गलत है। आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। आप भक्त आप सोच रहे कि हम बहुत भक्ति कर पूरा मानिक सब पूरा सब अटेंड कर सब कर रहे हैं, आप गफलत में हो, अंधेरे में हो। अगर आपके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, आप किसी को हरे कृष्णा नहीं बोल सकते, बोलने से कोई आ रहा है इधर चले गए, तो भगवान तो सब देख रहे हैं, आप किससे छुपा रहे हो अपने आप, है ना, भगवान से छुपाओ तो जाने, भगवान से अपने छुपाए। इसलिए भगवान कौन कितने पानी में है सब जानते हैं, दुनिया जाने या न जाने, लेकिन कृष्ण सबको जानते पहचानते हैं। उन्होंने अर्जुन से कह दिया कि अर्जुन तुम क्या समझते हो अपने आप, तुम्हारा जन्म मेरे साथ कितनी बार हुआ है, लेकिन तुम नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं, तुम एक साधारण जीव हो, मैं सबके दिल में क्या चल रहा है मैं जानता हूं, तुम सिर्फ अपने दिल की बात जानते हो, तो दाई से क्या पेट छिपाई, भगवान से कोई चीज छिपा नहीं है। अगर हम ये चीज नहीं समझते तो भगवान तो समझ रहे हैं, तो जिसको समझना है वो तो समझ ही रहा है। हमें किसको अपने आप समझाना है, भगवान को। हमें किससे डरना है, भगवान को, जो हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु और सखा भी, इनके प्रति हमारे हृदय में क्या होना चाहिए, आदर होना चाहिए। आज सबसे बड़ी कमी है कि उन्हीं के प्रति हमारे हृदय में सम्मान नहीं है, उनके लिए समय हमारे पास है ही नहीं। सोचने वाली बात, अपने घर में आपने भगवान को बैठा रखा है, लेकिन आपको बैठने के लिए समय नहीं है, ये भगवान का सबसे बड़ा अपमान है। आपको हम खुद ले जाएं अपने घर में सोफासन बैठा दें, हम आपको अन्न बैठे, आपको पानी नहीं पिलाए, पूछे नहीं, है ना, दिन भर आपको कैसा लगेगा, आप अपमानित महसूस करो। अब भगवान को आप वृंदावन से उठा के लेके आए, खरीद करके बैठा दिया, अखिल भोग नहीं लगा रहे, बैठ भी नहीं, कीर्तन नहीं कर, तो भगवान को कैसा लगेगा, सोचने वाली बात। हम क्या चाहते हैं, दो पैसे गर्भवती लड़ेंगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट में चेतन का, भगवान क्या सोचते हैं कि देखो दिन भर मैं भूखा बैठा हूँ, है ना, एक गरम गरम पराठा बनाता खाता चला जाता है ना, अपने लिए, है ना, अब तो पैसे गर्भवती जब याद आ जाती है, हाँ आरती करनी है, कहता है सुख संपत्ति घर आवे, कर तेरा तुष्कर पर क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, झूठ बोलता है। भगवान से झूठ। जब हमारे भक्त प्रचार करने जाते हैं, कभी कभी हमारे भक्त जब प्रचार करने जाते हैं, जानते हैं बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं, आए स्वामी जी, आए प्रभु जी, आप मेरी कुटिया में पधारे, है महल, तो क्या बोलेंगे, कुटिया, इसमें भी झूठ। अरे भाई बोलो कि हमारे कोठी है ना, कुटिया बोलेंगे, है कोठी, बोलते कुटिया, है ना, आज झूठ बोलने कितने आदि हो गए लोग, है ना, भक्तों से झूठ। हाँ हम लोग जाए, आप मेरे कुटिया में पधारे, है ना, फिर क्या बोले, आए प्रभु जी या स्वामी जी, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, है ना, तो कहेंगे ये मेरा ड्राइंग रूम है, वो तो हम देखते ही जब बैठे रहते हैं, फिर कहेंगे ये मेरा बेडरूम है, ये बच्चों का रूम है, ये प्ले है, बच्चों के खेलने का है ना, ये इंटरटेनमेंट रूम है, मान जहाँ मनोरंजन का कक्ष बना हुआ है ना, सब ऐसा पूरा डाइनिंग रूम सब बताएंगे। अब हम पूछते हैं कि भगवान का घर कहाँ है, एक कमरा भगवान, तो जब फालतू कानून बचा रहता है घर के कोने में, वहां पे लड्डू गोपाल को बैठा देते हैं, एक कहते हैं ये भगवान का। सोचने वाली बात, अपने लिए बड़ा बड़ा कमरा, अब भगवान को थोड़ी सी जगह बैठा कर अब बोलते हैं सब कुछ तेरा, कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा, बड़ा बड़ा कमरा अपने लिए, छोटे भगवान के लिए, कहते सब भगवान का, मेरा मेरा कत, यही स्थिति हमारी। यदि आप सही बात, अगर आप कल्याण चाहते हैं, इन सब छोटी छोटी चीजों से अपने आप को बचाने बचाइए। अगर आप वास्तव में भगवान का, इसीलिए घर घर में परेशान है, घर घर की कहानी यही है कि हर व्यक्ति अपने घर में क्या है, परेशान है, क्यों परेशान है? परेशानी दूर करने वाला आपके घर में बैठा हुआ है, आप ही ने बैठा है, इन्हें के लड्डू के पास वृंदावन चल के आप घर में आके बैठ गए, ऐसा नहीं, आप ही लेके आए अब बैठा है और आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं जैसा आदर करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं, है ना? तो भुगत आप इसी ले रह रहे हैं क्योंकि भगवान को रख करके हम भगवान का क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। भगवान वही है, प्रभुपाद जी कहते हैं जान लेना चाहिए कि चाहे भगवान लड्डू गोपाल के रूप में, चाहे छोटे रूप में है, चाहे यौ यौनम नव यौनम, चाहे भगवान हो, भगवान हर हाल में क्या होते हैं, भगवान होते हैं। पर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, आप अपने घर के भगवान को उसी प्रकार से विश्वास करें जैसे आप बांके बिहारी जी करते हैं कि बांके बिहारी में राजकारण में और आप घर भगवान कोई अंतर नहीं है। अगर आप अंतर समझते हैं तो गलत समझते हैं, अपराध कर रहे हैं। भगवान वही होते हैं, आपको भगवान की क्या करनी चाहिए, उसी तरह से आदर सम्मान पूजा करना चाहिए जैसे हम लोग मंदिर में करते हैं। आपको मंदिर में क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि 6 बार भगवान को भोग लगाया जाता है, 6 बार भगवान की आरती उतारी जाती है और भगवान का कीर्तन कथा चलता रहता है, इसलिए भगवान यहाँ प्रसन्न रहते हैं। इन्वायरमेंट जो है आध्यात्मिक होता है, संग ध्वनि होती है तो पूरा वातावरण डिवाइन होता है। इसे आप जैसे अपने घर से आते हैं आपको अच्छा लगता है, इसीलिए अच्छा लगता है। यही वातावरण आप अपने घर में बना सकते हैं। आप अगर 6 बार नहीं आरती कर सकते, 3 ही बार लंच ब्रेकफास्ट लंच और डिनर 3 बार भगवान का भोग लगाइए श्रद्धा से, और कम से कम 2 बार आरती की सुबह और शाम आरती करिए, और तब देखिए चमत्कार भगवान का। और फिर यहाँ तो आप आइए, भक्तों सीखिए, ये बहुत आवश्यक है कि घर में भगवान वही होते हैं लेकिन हम डर डर घूमते हैं, जहां भी जाते हैं हम संतुष्ट नहीं हो पाते। क्यों? कमी हमारे अंदर है, अब हम अपनी कमी को पहचान नहीं पाते, ये सच्चाई है। इसलिए प्रभुपाद यहां कहते हैं कि एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहते हैं। यदि राधा रानी या कोई अन्य गोपी कृष्ण को प्रसन्न कर लेती है तो अन्य गोपियां उसका अहित नहीं सोचती हैं। क्यों? वो तो ज्यादा क्लोजर हो गया है, नहीं ज्यादा क्लोजर हो गया, अब किसी की ऐसी टांग खिंचाई करो कि वो जो है वो कंफ्यूज कर देंगे, उसको कंफ्यूज कर देंगे। ईर्ष्या एक नहीं होना चाहिए, ओह उसने कृष्ण की सेवा कितनी बड़ी ढंग से की है, मैं भी कृष्ण की सेवा कितनी अच्छी ढंग से करूं ताकि वो उससे भी दिख प्रसन्न। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर कोई भक्त अच्छी सेवा कर रहा है आगे बढ़ रहा है तो उसको टांग नहीं खींचना चाहिए, उसको आप सपोर्ट करें। इसीलिए बताया गया है आध्यात्मिक जगत में बताया गया है कि अप्रिशिएट इन पब्लिक, है ना? पब्लिक में हमें क्या करना है, अप्रिशिएट करना चाहिए, और प्राइवेटली उसको क्या करना चाहिए, अगर कुछ गलती किया तो उसको डांटना चाहिए। ये नहीं कि पब्लिक में डांटे और प्रेज करें ही नहीं, उल्टा करते हैं। उत्साह कैसे बढ़ता है, इसलिए बताया अभी कम्युनिकेशन जो सेमिनार था उसमें बताया गया कि पब्लिकली जो है हमें क्या करना चाहिए, प्राइवेट अप्रिशिएट करना चाहिए। हर वक्त जो अगर कोई अच्छा सेवा कर रहा है उसको हमें क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट, उससे उत्साह बढ़ता है। लेकिन अगर कुछ चेस्टाइज करना कोई काम हो, कोई गलती सबसे हर इंसान से होती है, उसको अकेले में जाकर उसको क्या करो, समझाओ, इन्हें परे सारे दुनिया को बता दो और फिर उसको जाके बैठो, ऐसा गलत। ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब ईर्ष्या के कारण होती हैं। वही प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में आप कितने आगे बढ़ते हैं वो किससे पता चलेगा, कि आपके अंदर ईर्ष्या की भावना कितनी कम होती जा रही है। जितने आप ईर्ष्या से विमुक्त होते जा रहे हैं उतने आप भक्ति में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज के साथ क्या हुआ, ये हुआ कि एक रानी को जब पुत्र हुआ तो बाकी रानियां जो है ईर्ष्या से भर गई। ईर्ष्या बड़ी खतरनाक चीज है, और वो ईर्ष्या के कारण क्या हुआ कि एक संतान को भी सब मिल करके मार डाला और पूरा सब रोने का नाटक भी करने लगे। ऐसी स्थिति से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो ये जब स्थिति क्रिएट हो गई तब जो है अब वो जो उपदेश दे रहा है बेटा हर्ष शोक इतना बढ़िया दे रहा है, ये सब हमारा न कोई माता न कोई पिता, ये हमारे माता पिता, हमने कितने जन्म लिए पता नहीं किस किस होने में आप फिर जाएंगे, यही हमारी स्थिति है। वास्तव में सच्चाई ये है कि हम इस संसार में जब आते हैं तो भोगने की इच्छा होती है, जिसकी इच्छा होती है भोगने की, भौतिक संसार को भोगने की इच्छा होती है। यही कारण है कि जब भौतिक संसार में भोगने की इच्छा होती है तो हम इस शरीर में जीवात्मा इस संसार में आती है। अब भोगेगी कैसे? भोगने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। इसीलिए आत्मार्ता जिस हम आत्मा है, इसलिए हम जब आते हैं मां के गर्भ से शरीर को लेकर के आते हैं, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा भोग ही नहीं सकती। अब आपको खाना है तो कैसे कहें मुंह लेके, इसलिए ये पूरा बॉडी मुंह नाक ये सब लेके आते हैं हम शरीर के साथ। आत्मा जब भी संसार में आती है शरीर के साथ आती है, और चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु का शरीर हो, चाहे पक्षी का, चाहे कॉकरोच का, कोई भी पेड़ पौधे, ये सब शरीर हैं, सब जड़ शरीर चलते ये सब सर। तो ये 84 लाख योनि किसी भी योनि को वो लेकर के आता है इस संसार में। लेकिन जैसे ही ये शरीर यूजलेस हो जाती है, भोगने लायक नहीं रह जाती है, वही आत्मा जो शरीर को लेकर आती है छोड़ के चली जाती है। ये सच्चाई। आप खुद सोचिए कि हम कितने निर्मोही और निर्दयी हैं, कितने निष्ठुर हैं, कि जिस शरीर को हम लेके आते हैं हम तो निष्ठुर हैं, उसी को छोड़ करके चले जाते हैं। जो आत्मा अपने शरीर का सगा नहीं है, दूसरों का सगा कैसे हो सकता है? इसलिए कोई किसी का नहीं। ये जितने रिश्ते आते हैं ये सब टेम्परेरी है, कोई किसी का नहीं। ये सब क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कैसे? ये सच्चाई। भगवत गीता भगवान क्या करते हैं कि जिसने जन्म ले लिया अर्जुन, उसकी मृत्यु निश्चित है। अब जन्म ले लिए, अब मृत्यु पक्की हुए, तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो गैप है उसका पूरा करने में पूरे संसार का हर जीव लगा हुआ है, किसी भी योनि में हो। क्योंकि उसको मालूम है कि मरना तो है ही है, लेकिन मरने के पहले तक का समय कैसे कटे, तब ये सारे रिश्ते नाते ये सब क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। ये सारे संबंध बनाए जाते हैं, जबकि आत्मा का किसी का संबंध होता नहीं है। ये संबंध बनाया जाता है ताकि टाइम कैसे कटेगा, क्योंकि मरने का समय फिक्स नहीं है, अब जीना है तब तक क्या करेगा। इसलिए ये सब एक्टिव है, सब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, सब किसी न किसी में इंगेजमेंट लगा हुआ है। टाइम पास मरने का इंतजार कर रहा, मरा सब खत्म हो जाता है, टेप सब खत्म, स्टोरी खत्म हो जाती है। यही स्थिति तो जन्म और मृत्यु के जीव के बीच का जो समय है कैसे कटे, ये रिश्ते इसलिए बनाए जाते हैं। न कोई सिख का नाना, न किसी की नानी, न कोई बुआ, न कुछ न कोई रिश्ता किसी का माता का। लेकिन टाइम पास कैसे किया जाए? भाई आप बताइए, जैसे एक लड़का है लड़की है, राइट? अब जैसे ही जवान होते हैं ये संबंध बनाए जाते हैं, पंडितों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, आज इंटरनेट से भाई शादी का लड़का लड़की के, लड़का लड़की का, फिर ऐसा करे संबंध है नहीं, लेकिन क्या करे भाई, अब जीना है, संसार में रहना है, तो संबंध बनाया जाता है। हाँ है नहीं संबंध, अब जबरदस्त जितने पंडित हैं पूरा बड़े बड़े पत्र देखेंगे, पूरा बड़ा छानबीन के साथ जो है शादी होती है, राइट? हम ग्रह नक्षत्र सब मिलाए जाते हैं, कुंडली क्या बोलते हैं इसको, कुंडली बोलते हैं, अब कुंडली सब मिलाकर बना जाए, अब फिर भी तलाक होता रहता है, 10 दिन के बाद परेशान होता है, 1 दिन के बाद ऐसा हो रहा है। आप अखबार उठा के देखिए, देखिए कितना हो रहा है, हत्याएं हो रही, ये हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं? जब इतना जन्म पत्री आप दिखाए, कुंडली भी मिलवाई, फिर शादी करने के बाद 10 दिन के बाद 1 महीने के बाद तलाक हो रहा है, पट नहीं रहे, मारामारी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कभी संबंध आया ही नहीं? अभी जबरदस्ती संबंध बना दिया गया तो फ्रिक्वेंसी कैसे मिलेगी? फ्रिक्वेंसी इसीलिए चित्रकूट चित्रकेतु महाराज को जो ये जब समझाया गया, और जब बेटा था बच्चा वो बेचारा समझा करके फिर मर गया, चला गया, तब चित्रकेतु वहां कहे की बात तो सही कर रहा बेटा। नारद जी यही सच्चाई समझाने के लिए, घटना इसी के लिए, तब चित्रकूट महाराज को समझ आ गया कि हमें इस अंधकूप से अब क्या होता है, किसी तरह से निकलना चाहिए। तो इस अंधकूप में, क्योंकि हम अंधकूप में गिर गए हैं, तो हमें इससे निकलने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। हमारा क्या कर्तव्य है? तो उस इसे कैसे बचा जाए, है ना? तब नारद जी ये मंत्र देते हैं। ये लोग क्या किए, जब सब समय में आ गया, बेटा मर गया, उसका दाह संस्कार कर करके फिर रानी तृतीय और चित्रकेतु ये दोनों यमुना जी में जाकर स्नान किए। स्नान करने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद, स्नान करने के बाद बैठे, अत्तम नारद जी कहते हैं कि जो मैं तुम्हें मंत्र दूंगा इसका अगर तुम करोगे तो सात रात में जो है तुम्हारे वही स्थान प्राप्त हो जाए जो मिलना चाहिए। तब जो है ये ओम नमः भगवते वासुदेवाय जो ये मंत्र बताए हैं, ओम नमस्तुम भगवते वासुदेवाय धीमहि, ये प्रकार का मंत्र दिया गया। और आज हम सबको उद्धार करने की, क्योंकि उस युग की बात है, इस युग में हमारा क्या मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, और जो नाम अपराध, वैष्णव अपराध, इन सब अपराधों से अपने आप को बचा करके जब भक्ति करेंगे, तब आपकी भक्ति क्या होगी, आगे बढ़ेगी। और जितने काम क्रोध और लोभ भगवान गीता में कह दिया है, ये तीनों क्या है, नरक के द्वार। लोग इसी में लिपटे हुए हैं, सब जानते हैं काम क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं। लेकिन थोड़ी सी बात हुई तो लोग गुस्सा कितना करते हैं। आप दिल्ली की सड़कों पर चल के देखिए, अब थोड़ा सा टच करा दीजिए गाड़ी, अब तब देखिए क्रोध क्या होता है। देन एंड देयर मारपीट, मर्डर कर देते हैं सड़क पे, रोड डेज। कितनी गलत बात है कि क्रोध पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि सब फ्रस्टर है, सब लोग इतनी स्ट्रेस में तनाव है कि जहां मौका मिलता वहीं अपना पूरा टेंशन निकाल देना चाहते हैं। इसलिए सर घर में भी ये हालत है ना, घर में क्यों आनंद नहीं है, इसलिए कि सब फ्रस्ट है, असलियत से परे है। जिनके के समय देना चाहिए, जो आनंद देने वाले हैं उनको समय न देकर के हर जगह समय बिताया जा रहा है, इसलिए इंसान कष्ट पा रहा है। तो आप लोगों से जो इस कान से जुड़े हुए हैं, कृष्ण महाराज में शरण है, कम से कम आप जैसे गृहस्थों को तो ये जरूर समझना चाहिए कि आप जो है यदि आनंद लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कंसंट्रेट करें किसने, कृष्ण पर। प्रणव जो ओम शब्द है ये किसको बताया गया है, कृष्ण। भगवान कहते हैं गीता, प्रणव सर्वेदेश, सारे वेदों का जो ओंकार है, कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आप सबको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और आकर के राधिका रमन जी का दर्शन कीजिए और सेवा कीजिए, और अपने घर में जो ठाकुर जी को बैठा रखे हैं उनको भी समय निकालिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो वही बात है, धोबिया जल विद मरत प्यासा, धोबी जल के बीच बैठा हुआ प्यासों मर रहा है, क्यों? घर में भगवान को आप जो आनंद के आगार हैं, आनंद देने वाले स्वयं भगवान आपने घर में बैठा रखा है, अब फिर भी आप आनंद से वंचित हैं, इससे हमारी कमी है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि भगवान का जो आशीर्वाद है, आनंद बह रहा है, लेकिन हम लोग जो रिसीवर हैं हम स्वयं खराब हैं। जैसे रेडियो की जो तरंगे होती हैं वो बह रही हैं, टेलीविजन की जो दूरदर्शन की तरंगे हैं वो बह रही हैं, लेकिन अगर आपका टेलीविजन बॉक्स ही स्विच ऑफ है, खराब है, आपका रेडियो सेट ही खराब है, तो फ्रिक्वेंसी का कोई कसूर नहीं। उसी प्रकार से प्रभुपाद ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार से भगवान राधिका रमन जी की जो आशीर्वाद है बह रहे, कृपा बह रही है, लेकिन हम खुद खराब हैं, हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा रिसीवर खराब है। तो कैसे रिसीव करेंगे ब्लेसिंग, जब चेतो दर्पण मार्जन, जब आपका चित्त रूपी दर्पण निर्मल हो जाएगा भगवान का नाम लेकर के, अपराध रहित जब भक्ति करेंगे, और तब जो है भगवान की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप सबसे यह अनुरोध है, इसका बहुत ही सरल ढंग से हमने समझा दिया कि इसमें यही प्रसंग है, किस तरह से 1 करोड़ रानियां जो है ईर्ष्या के कारण एक संतान को मार डालती हैं, और इससे जो है अंगिरा मुनि और नारद जिया करके महाराज चित्रकेतु को जो है ये दिव्य ज्ञान देते हैं कि ये संसार का जितना भी संबंध है, ये सारा सांसारिक संबंध यही सारे दुख का क्या है, कारण है। अगर अपना संबंध आप किससे बना लेंगे, परम भगवान से, तो आप इस दुखों से क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। ये इनका सार तो समझाएंगे। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोले।
बहुत बहुत धन्यवाद पूजी। वैसे तो तीन सवाल है। पहले तो आपने बताया मुझे कि हम भगवान के नजदीक बैठे हैं, लेकिन फिर भी जैसे हम दुख का अनुभव करते हैं, जैसे आपने बताया कोई पानी के नजदीक बैठा है लेकिन पानी पानी चला रहा है,
बिल्कुल,
तो क्या क्या कारण होता है कि हम लोग
अज्ञानता, इस सब का कारण क्या है? अज्ञानता। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो हमारी अज्ञानता क्या करे, दूर करे। तो लोग जो कष्ट पा रहे हैं वो अज्ञानता के कारण पा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते कि हर जगह जो है इस कान का मंदिर होना चाहिए, ताकि इन लोगों की जो अज्ञानता हो हमारे भक्त दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो, क्योंकि ये आनंद ले सकें। तो अज्ञानता जब दूर हो जाती है, हम ज्ञान, जैसे हम लोग जब तक इस कान या प्रभुपाद जी किताब नहीं पढ़े हम लोग भी अज्ञानता में थे। मैं तो 35 साल से दिल्ली में हूँ। कितने साल से? 35 साल से दिल्ली में। कितनी अज्ञानता थी, लेकिन आज ज्ञान प्रकाशित हो गया, आनंद ले रहे हैं। यही आनंद है। ये अज्ञानता, अज्ञानता मूल कारण क्या है? अज्ञानता है। हमारा एक ज्ञान होना कि हमारा संबंध किससे है? भगवान से, जीवरे स्वरूप नित्य और कृष्ण दास, कृष्ण का हम दास हैं, उनकी सेवा करना ही हमारे क्या है, मूल सेवा है। ये जानना बहुत जरूरी है।
हरे कृष्ण। दो सवाल और थे बड़ी। दूसरा सवाल ये था कि जैसे आपने बताया कि जो चित्रकेतु की रानियां थी उन्होंने ईर्ष्यावश जो है अशोक को जो है जहर खिला के मार दिया, तो अक्सर जब ऐसे लोग कहानी सुनते हैं तो पूछते हैं जैसे घटना होती है किसी की मृत्यु होती है तो उसमें क्या होता है? लोग सवाल उठाते हैं कि या तो जिसको जैसे हर्षोक है उस वो अपने कर्म के फलों के कारण मारा, या फिर जो रानियां थी उन्होंने बुरा कर्म करके उसको मारा, या फिर दोनों थे, तो उसको हम लोग कैसे समझा सकते हैं कि या तो अपने कर्मों के कारण ही मरा हर्षोक, उसको मरना था, या ऐसे नहीं था, वो रानी था उनका कर्म था उसने उसको मारा।
सबसे बड़ा कारण ये था कि भगवान एक ज्ञान देना चाहते थे, है ना। वो किस कारण से मरा हमें कारण से हमें नहीं जाना है। प्रभुपाद बोलते जैसे नदी में कोई गिर जाए ये सोचे किसने मुझे धकेला, क्यों धकेला, वो मर जाएगा, है नहीं। अब हम जब इस भौतिक संसार में आ ही गए हैं, अंधकूप में गिर गए हैं, तो कैसे निकले सिर्फ यही सोचना चाहिए। हम क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों है, क्या है, कैसे मरा, क्यों मरा, कैसे मरा? उससे अच्छी चीजें निकल के आई कि कम से कम उसको इसी के माध्यम से नारद जी को ज्ञान देने का मौका मिला। यही कारण है जब किसी का डेथ हो जाती है और आप उठाला में जाओ उसमें लोग बड़े असलियत में रहते हैं, उसमें लोहा गर्म होता है जब आप उपदेश देते हो, उनको समझा कि बात सही है। लेकिन जैसे ही सभा खत्म, चाय काफी शुरू, सब खत्म। यही हो रहा है आज। जो जो बड़े बड़े भागवतम हो रहे हैं, 10-10 लाख के पंडाल बनाए जा रहे हैं, कथावाचक भी लाखों रुपए ले रहा है, श्रोता भी खूब आ रहे हैं, भीड़ मचा रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, राइट। लेकिन सुधर कोई नहीं रहा है। सोचने वाली बात है, क्यों? कोई सुधरना नहीं चाहता, ये समस्या है। तो इसी तरह ये एटमॉस्फेयर जब क्रिएट किया गया, ये जब हुआ, अंग्रेजी ने पहले इंस्ट्रक्शन दे कि हम पुत्र तो देंगे लेकिन इस हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। लेकिन वो लापरवाह, अरे पहले आने दीजिए, शोक आएगा देखा जाएगा। तो अपने लोग भी जैसे हमारे भक्त प्रचार करने जाते हैं, लोग कहते हैं अरे यार जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, अगले जन्म हम सुअर बने, कुकुर बने, इससे हमें क्या लेना देना, अभी तो जीने दो, खाने पीने दो। भक्तों से बोलते हैं, है नहीं, अभी तुम आप लोग तो कुछ खाते नहीं, हमको भी नहीं खाने दे रहे हैं। सही बात थी। एक अशोक विहार में एक बहुत बड़े आदमी है, मैं उनको जब पहली बार मिलने गया उनके ऑफिस में, एक सच्ची घटना है कि हम झूठ तो बोलेंगे, वो आदमी इस कान के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। उसे किसी दोस्त ने बताया था कि इस कान बहुत बड़ी अच्छी सोसाइटी है, तुम इसका मेंबर बन जाओ। तो मैं उनके ऑफिस गया, ये सत्य घटना है, अशोक विहार रहते हैं। जैसे गए तो उसमें आदमी सिगरेट पी रहा था, हम बैठ गए तो कहे एक सिगरेट निकाला, कहे स्वामी जी आप भी सिगरेट पीजिए। बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ऐसे बोला, एक सिगरेट निकाला, कहा स्वामी जी आप पूछे, तुम लोग तो सिगरेट पीते ही नहीं, आप लोग सिगरेट नहीं पीते? कि मैं तो ऋषिकेश जाता हूँ, वहां पर सारे साधु पीते हैं।
वास्तव में उसकी गलती नहीं थी, उसने साधु को चीलम कहा था, सिगरेट पीते हुए देखा था, है ना। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत बड़े साधु संस्था से जरूर पीते होंगे, जब संरक्षा साधु पी रहे हैं, है ना, तो ये तो बड़े साधु होकर जरूर महंगी सिगरेट पीते होंगे। उसके दिमाग में गूंज रहा था सच्ची, तुम कहा भाई हम लोग तो पीते नहीं। तो कहे ठीक है चाय मंगवाता हूँ। उसने कहा कि चाय, हम कहा हम तो चाय भी नहीं पीते, कहे सिगरेट आप नहीं पीते, चाय आप नहीं पीते, तो आप लोगों का जीवन बेकार है, कुछ खाते पीते नहीं। वो पंजाबी बंदा खाने पीने वाला है, कहे आप लोग का जीवन में तो कुछ खाते पीते नहीं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते। बोले बताया उसको, हम लहसुन प्याज नहीं खाते। तो कहे फिर यहाँ पे जीवन जीने का खाने सब खाने पीने में जो चीजें हैं हम लोग खाते, तो आप खाते पीते क्या है। हमने कहा आप हमारे मंदिर में आइए, स्टाफ क्लास मंदिर में, और फिर हम आपको खिलाएंगे हम क्या खाते हैं, आपको राजभोग खिलाएंगे, ठाकुर जी का प्रसाद, है ना। आप प्रभावित हो, बोले फिर उसको मैंने समझाया, है ना। तब उसको पता चला कि ऐसी भी दुनिया है, यही है अज्ञानता। अब वो अज्ञानता, लेकिन जैसे ही मुलाकात हुई वो अज्ञानता क्या दूर, जब सब परिवार मंदिर आया, ओहो देख करके एकदम तबियत खुश हो गई, एकदम तबियत खुश हो गई, और अब इस कान का मेंबर बन गया और सिगरेट भी छोड़ गया। तो यही संग देना है। ये 2009 जो मिस इंडिया एकता चौधरी, जब हम पहली मुलाकात हुई थी उसके मार मिस इंडिया के साथ, तो ऐसे मैंने प्रचार किया, वो सिर्फ 10 मिनट का हमारे पास समय था, और ये माल का एक उद्घाटन था गुड़गांव में, बहुत बड़ा माल है, उसके उद्घाटन मुझे भी बुलाया था, लेकिन चीफ गेस्ट मिस इंडिया थी उस समय 2009 की मिस इंडिया, तो मैं भी गया था। तब स्टेज पे दोनों को बुलाया, हमको बुलाया उनको बुलाया, दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट थी, तो मिस इंडिया के साथ ही हमारी सीट लगी हुई थी, उनका अच्छा मौका है। यहाँ तो एक सुंदर लड़की को देखने के लोग तरसते रहते है ना, मैं देखने की इच्छा रहती है ना, यहाँ मिस इंडिया सामने बैठी हूँ, हम बात न कर कैसे हो सकता है ना, मिस इंडिया बैठी हो बात न कर कैसे हो सकता है। तो भगवान की इच्छा थी, तो हमारे दिमाग में भगवान ने एक बात दी, हम कैसे बात करें। मैंने उससे कहा मिस इंडिया से, उनका एकता जी, उसका नाम एकता चौधरी है, आप क्लिक करेंगे यूट्यूब में जाएगा, तो उससे कहा एकता जी मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार आप हमारे मंदिर आ करके उन भगवान को थैंक्स दीजिए जिन्होंने आपके सर पे ताज रखा है मिस इंडिया। मैंने यही बोला उससे, आज तक विश्वास करके कि यस यू आर राइट स्वामी, आज तक मुझे किसी ने बोला ही नहीं। हम कहा हजारों खूबसूरत लड़कियों में से भगवान ने आप ही को सिलेक्ट किया है, तो कम से कम उनको थैंक्स देने के लिए एक बार मंदिर आइए। ये बात उसके दिमाग में जज गई, उसने कहा कि स्वामी जी अपना मोबाइल नंबर दे, हमने अपना मोबाइल ही पकड़ा दिया उसको। उतर तो खड़खड़ खड़खड़ जो है अपना फिट, मेरा फिट अपना मान फिट कर दिया, अब मिस कॉल लेकर के अपना लेकर के, और दूसरे दिन फ्लाइट से कलकत्ता चले गए कि राधानाथ स्वामी महाराज की बुक लॉन्च था वहां चले। लेकिन वहां से मैं 3-4 एसएमएस करके अब प्रोग्राम सेट कर दिया। जब यहाँ पे आए 3 दिन के बाद राधा पार्षदी का दर्शन जैसे ही किया, हमारा काम क्या है इतना, किसी न किसी तरह से इन लोगों को लेकर के आए और भगवान सामने खड़ा कर दे, बाकी काम कौन करेंगे, भगवान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यही नहीं, अब उसके बाद भगवान राधा पार्षदी दर्शन करने के बाद फिर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने थोड़ा सा प्रवचन देकर गीता दिया, अब जब प्रसाद खाया गोविंदा रेस्टोरेंट का तो पागल हो गए। फिर हम यहाँ लेके आए, आपकी यहाँ भी आए थे राइट, यहाँ पे उसमें यहाँ एक महाराज आए हुए थे, बड़े खुश इतना। फिर मायापुर के लिए भी तैयार हो गए, जब मायापुर लोग 3 मायापुर जाकर एकदम पागल हो गए, कहे कि स्वामी जी आप यहाँ 2 दिन और ठहरिए। हम 3 दिन के गए थे, हम कहा पहले अपने मम्मी से पूछो, ये तो मम्मी मारे डांटेंगे हमें कि स्वामी जी लेके गए 3 दिन के लिए, 18 लिए 5 दिन तक। हाँ तो कहने का मतलब भगवान इतने अच्छे हैं, हम क्या है, हम सब इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, हम किसी तरह से उनको जो है ला करके भगवान सामने खड़ा कर देंगे, हम गीता उनको दें। जानते हैं वो मेंबर भी बन गई, पूरा भागवतम सेट उसने लिया है ना, और जब वहां पे गई तो मायापुर के भक्तों ने उसको चैतन्य चरितामृत दिया। तो ये है, माने सब भगवान ही, जो प्रेरणा भी देते अगर भक्त कुछ भी बोलता है तो एक कौन गाइड करता है अंदर में जो भगवान परमात्मा रूप में, बस हमें प्रयास करना चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए, प्रचार की इच्छा होनी चाहिए, भगवान खुद क्या करेंगे गाइड करेंगे, क्योंकि परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। अभी 2012 जो लेटेस्ट जो मिस इंडिया बनी है, मैंने उसको भी बुलाया था, उसका नाम है प्राची मिश्रा, है ना, क्या नाम है उसका, प्राची मिश्रा, अभी उसको मैं बुलाया। ओहो, जब राधा पार सारथी का दर्शन करने के बाद, है ना, अभी फिर गई है मिस अर्थ बनने के लिए, कि तीन कंपटीशन होता है, मिस इंडिया का तो हो गया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ। तो मिस अर्थ के लिए एक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने जो है उसका पूरा खर्चा वो लोग दे रहे हैं, तो वहां गई है, तो कहे कि जैसे ही वहां से आऊंगे स्वामी तुरंत मायापुर जाना है, है ना, अब वो भी भगवद गीता पढ़ना शुरू कर दिया। देखो ये सब कौन देता है, भगवान देते हैं, यश सुंदरता धन बुद्धि ये कौन देता है, भगवान देते हैं। तो भगवान ही जिसको सुंदर बना दिया वो सुंदरवान बन गया, भगवान जिसको ज्यादा धन दे दिया धनवान बन गया, भगवान जिसको बल दे दिया दारा सिंह जैसा पहलवान बन गया, जो भगवान ज्यादा ज्ञान दे दिया साइंटिस्ट बन गया। तो बनाने वाला कौन है, वही भगवान है। जो भगवान आपको एक चीज देते हैं, चाहे आप धनवान हो चाहे सुंदरवान चाहे बलवान हो, आपका क्या फर्ज बनता है, आप सबको भी भगवान की सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको दिया। अल्टीमेट हमें भगवान ही नजर आते हैं, तो हमारे माता पिता कौन है, भगवान ही है, सखा भी हैं बंधु भी हैं। हम इस चीज को समझें, अपने जीवन में उतारें और भगवान को ज्यादा से ज्यादा समय हम भगवान को दें, इसमें हमारा क्या होगा, कल्याण होगा। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय।